الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह बनी इसराइल की आखिर कुरान जिल्द नंबर 5 से तफसीर पढ़ते हैं, और जो आयात अभी तिलावत की गई इनका हमने पिछली क्लास में तर्जुमा पढ़ लिया था। आज हम इनका खुलासा तफसीर पढ़ेंगे, जो कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर बयानुल कुरान से यहाँ पर नकल फरमा दिया है। तो उसमें तफसीर का तरीका हजरत ने यह रखा है कि जो ब्रैकेट्स में यानी बैनुल कौसैन अल्फाज लिखते हैं तो वो तफसीर होती है मुख्तसर सी, और अंडरलाइंड जो चीज़ होती है बैन सुतूर सुतूर तो वो तर्जुमा होता है। तो इस तरह से खुलासे तफसीर के अंदर तर्जुमे की भी एक दफ़ा दोहराई हो जाती है, रिविजन हो जाती है। तो खुलासे तफसीर हम पढ़ते हैं, तो चूंकि इन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात में नबी अलैहिस्सलाम से मुखातब हैं, तो अल्फाज में तो नहीं है कि या मुहम्मद, ऐसे तो नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने। इस वजह से तफसीरन ब्रैकेट्स में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिख दिया कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए तो हमारे लिए मुस्तहब है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जिंदगी में कम अज कम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना ये वाजिब है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, ठीक है। लेकिन वैसे जब भी नाम लिया जाए, जब भी नाम सुना जाए या हम खुद पढ़ें तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हत्ता के एक हदीस मुबारक तो ये भी है कि जिसने मेरा नाम सुना और दुरूद शरीफ ना पढ़ा तो बर्बाद हो जाए वो शख्स बर्बाद हो जाए। वो जो तीन बातें हैं ना, वालिदैन को पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाई, वो बर्बाद हो जाए। रमजानुल मुबारक का महीना पाया लेकिन अपनी बख्शिश नहीं करवाई, वो बर्बाद हो जाए। तो वहीं पर तीसरी चीज ये भी है कि जिसके सामने मेरा नाम पढ़ा गया और उसने मेरे ऊपर दुरूद शरीफ नहीं भेजा तो वो भी बर्बाद हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतना हक रखा है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात यानी अहकाम मज़कूरा जो अहकाम जिक्र किए गए थे पिछली आयात के अंदर, तो वो बातें इस हिकमत में की हैं, इस हिकमत की यानी ये बातें जो है ना, ये हिकमत वाली बातें। ज़ालिका मिम्मा अवहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये हिकमत यानी ये पूरी की पूरी हिकमत नहीं है, ठीक है। ये जो जो पीछे अहकाम बयान किए गए ये पूरी की पूरी हिकमत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकाम और भी हैं जो कि यहाँ पर बयान नहीं किए गए। ठीक है, लेकिन इतना हमें जरूर पता चल जाता है कि हिकमत क्या है, ये अल्लाह ताला के हुक्म ही है। ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म ही है हिकमत, उनके अलावा कोई चीज यानी उनसे हट करके या उनके खिलाफ कोई चीज हरगिज हरगिज हिकमत की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो अहकामात बयान किए गए ये अल्लाह ताला के अहकामात में से कुछ अहकामात हैं और ये हिकमत है। ठीक है, तो इस हिकमत में की हैं, यानी थोड़ा सा उर्दू जरा सा हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बात उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। जो खुदा ताला ने आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए भेजी, मिम्मा औहा इलैका, वही के
ऐसा
जरिए, वही कैसे आती थी,
कुछ शामिल है
जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है वो अपना कलाम अता फरमाते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनते थे अल्लाह ताला का कलाम और वही आकर के नबी अलैहिस्सलाम को सुनाते थे। ठीक है, तो कभी किसी शक्ल में आते थे, कभी किसी शक्ल में आते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को वो कलाम सुनाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो कलाम पहुंचता था इस तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से। अच्छा, कल किसी किसी से बात हो रही थी, किसी नौजवान से ही, कि हर फरिश्ते की जो ना जो जो बड़े बड़े चार फरिश्ते हैं ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम और इजराइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, इसराइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते, इसराफील अलैहिस्सलाम जो है वो सूर फूंकने के फरिश्ते, और मीकाइल अलैहिस्सलाम जो है वो बारिशों और हवाओं के फरिश्ते। ठीक है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के फरिश्ते। तो बाकी तीन फरिश्ते जो हैं, इसराफील, मीकाइल और इसराइल, इनका तो हमें हदीस मुबारक से बहुत क्लियर पता चल जाता है, और हमें मतलब पता तो खैर हर का पता चल जाता है, लेकिन जरा हमें समझ में भी आसानी से आ जाता है कि भाई इनके पास जो है ना वो टीम्स हैं इनकी, ये अकेले काम नहीं करते, जैसे बारिश बरसाने का काम वो अकेले नहीं कर रहे होते, बल्कि पूरा पूरे के पूरा एक यानी जत्थे के साथ कर रहे होते हैं। हर हर फरिश्ता वो एक एक कतरे को ले करके ऊपर से नीचे उतर रहा होता है, बादल को निचोड़ता है और वो कतरा जो उसमें से निकलता है बादल में से, उसको ले करके पत्ता जो यानी एक फरिश्ता जो है वो नीचे उतर रहा होता है। तो हमने जब ये बात कही तो छोटी बेटी साहिबा आई, वो कितने सारे फरिश्ते होते होंगे, तो जी बिल्कुल बहुत सारे फरिश्ते होते हैं, बहुत फरिश्ते होते हैं। तो हर फरिश्ते की एक टीम है, इवन जो इसराइल अलैहिस्सलाम है उनकी भी पूरी टीम है। ठीक है, तो जिस जिस भी मखलूक की जान निकालते हैं वो इसराइल अलैहिस्सलाम खुद निकालते हैं, जान निकालने का काम वो खुद करते हैं, लेकिन निकालने के बाद के जो काम है ना वो खुद नहीं करते, बल्कि उनकी टीम करती है। ठीक है, वो जिब्राइल, वो इजराइल अलैहिस्सलाम से रूह को ले लेते हैं और फिर उसको जो है ना वो आसमानों तक ले करके जाते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वहां से जो भी हुक्म मिलता है उसके मुताबिक उस रूह को वापस लेकर के आते हैं, ये टीम कर रही होती है काम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास कोई टीम है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाने का काम करते हैं, तो क्या वही भी जो है वो टीम के साथ लेकर के आते हैं या अकेले लेकर के आते थे? ठीक है, अगर तो वो अकेले लेकर के आते थे तो फिर टीम उनकी क्या करती है, ये आप बता दें, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की टीम का क्या काम है, या ये कि वही जो है वो पूरी टीम की फॉर्म में लेकर के आते थे, पूरी टीम वही लेकर के आ रही होती थी, अकेले नहीं लेकर के आ रहे होते थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की क्या टीम है, क्या उनकी भी टीम है, और अगर उनकी टीम है तो वो क्या करती है किसी को पता? प्रोटेक्शन का काम करती है। हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त, जिन्हों से हिफाजत का काम करती है, जबरदस्त, अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, दोनों ने अच्छा जवाब दिया, जिन्हों से हिफाजत यानी वही की हिफाजत का काम, ताकि जिन जो है ना वो उसके अंदर कुछ वो ना कर सके, इंटरफेरेंस ना कर सके, तब्दीली ना कर सके। ठीक है, शैतान से बचाती है, जिन्हों से हिफाजत। चले, बहुत अच्छा जवाब दिया, खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक और भी टीम तो है, इसका मतलब है आप लोगों का जवाब यही है कि टीम है, करती क्या है, वही की हिफाजत का काम करती है, वही लाने का काम तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद करते हैं। ठीक है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते इस वाले काम को, लेकिन एक और भी काम है जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की टीम करती है, वो काम क्या है? वो काम है मुसलमानों की कुफार के मुकाबले में मदद, ठीक है, काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों की मदद। जब मैदान जंग के अंदर जब आमना सामना होता है ना, तो उस वक्त भी जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की टीम होती है जो कि मुसलमानों की मदद करती है, ठीक है, जैसे बदर के अंदर और हुनैन के अंदर और बहुत सारे दूसरे मौकों के ऊपर, ठीक है, तो वो भी एक पूरी टीम है। अब ये और बात है कि नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी भी अपनी टीम के साथ उतरते हैं या जिब्राइल अलैहिस्सलाम का उतरना बंद हो गया? ठीक है, उतरना तो बंद हो गया, ये तो ये बात हमें पता चलती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का उतरना बंद हो गया तो क्या अब जो है वो फरिश्तों की मदद आनी भी बंद हो गई? लेकिन अल्लामा इकबाल तो फरमाते हैं कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते अपनी फरिश्ते अब भी गर्दों से उतर सकते हैं, नहीं क्या है, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को अब उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, राइट, अब भी उतर सकते हैं, अल्लामा इकबाल तो ये फरमाते हैं। तो क्या है भाई, तो भाई इसके ऊपर मशायख ने बताया कि हदीस मुबारक से ये भी पता चलता है कि टीम जो है ना वो उतर चुकी, अब वो वापस गई नहीं है, वो वापस ऊपर गई ही नहीं है, तो अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दोबारा टीम लेकर के आने की जरूरत ही नहीं है, टीम तो ऑलरेडी दुनिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो अब जो है ना वो सिर्फ आप जो है फिजाए बदर पैदा कर रहे हैं, है ना, यानी आप बंदे दे पुत्र बन जाएं, आप इंसान के बच्चे बन जाएं, आप अल्लाह के बंदे बन जाएं, बस वो टीम अवेलेबल है टू हेल्प यू आउट, राइट, आपकी मदद करने के लिए टीम अवेलेबल है, अब ऊपर से नीचे आने की भी उसको जरूरत नहीं है। बहरहाल तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो गई। एनीवे, तो बात ये हो रही थी असल में तर्जुमा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए से ये हिकमत अल्लाह ताला ने भेजी है, और ए मुखातब यानी नबी अलैहिस्सलाम सलाम आप जिनको मुखातब किया जा रहा है, अल्लाह बरहक के साथ नबी अलैहिस्सलाम सलाम के वास्ते से बल्कि उम्मत को मुखातब किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अब जो है ना वो शिर्क से महफूज रहने की बात की जा रही है, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम से तो शिर्क का कोई मुमकिन ही नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अब उम्मत को मुखातब किया जा रहा है, इसी वजह से ए मुखातब का लफ्ज इस्तेमाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि अल्लाह बरहक के साथ कोई और माबूद तजवीज ना करे, ठीक है, वला तजअल मअ अल्लाह इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, अगर तुमने ऐसा किया ना, वरना जैसे हम उर्दू में कहते हैं वरना तू इल्जाम खोरदा और रानदा होकर जहन्नुम में फेंक दिया जाए, ठीक है, शिर्क एक ऐसा गुना है जिसको कि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया मैं नहीं माफ करूंगा, मैं नहीं माफ करूंगा, ठीक है, तो अब जब अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे किसी चीज के ऊपर तो फिर तो जहन्नुम ही है, बाकियों के ऊपर पॉसिबल है माफ करना लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बाकी चीजों की के ऊपर अल्लाह ताला माफ फरमा ही दें, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शिर्क पे ना माफी की गारंटी है, शिर्क पे ना माफी की गारंटी है, बाकी गुनाहों के ऊपर माफी की गारंटी नहीं है, तो उसके लिए कुछ उसूल और कवायद भी हैं और हमें चाहिए कि हम उनको जाने और उनसे डरे। जैसे कि एक उसूल ये है कि अगर किसी ने गुनाहे कबीरा के ऊपर तौबा नहीं करी हो, गुनाहे कबीरा पे तौबा नहीं करी हो, तो उसके गुनाहे सगीरा वुजू से मस्जिद जाने से, राइट, या उम्रे करने से या नेकियां करने से उसके गुनाहे सगीरा माफ नहीं होते, अगर उसने गुनाहे कबीरा से माफी नहीं मांगी हुई है अल्लाह ताला से, तौबा नहीं करी हुई है अल्लाह ताला से, तो गुनाहे सगीरा माफ नहीं होते हैं, ठीक है। सूरह निसा की आयत नंबर 30 से 31 की जा करके आप तफसीर पढ़ लीजिए। तो गुनाही कबीरा का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्या फरमा रही है, व्हाट इज रहमत एंड लानत, इज इट रिलेटेड टू फरिश्ते, व्हाट इज रहमत एंड लानत, रहमत ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास मदद है, एक नूर है, एक जो कि अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ नाजिल फरमा, ठीक है ना। ये रहमत के फरिश्ते हैं, ये अजाब वाले फरिश्ते नहीं है कि वो फरिश्ते आ रहे हैं तो उनके साथ रहमत आ रही है, नहीं, अजाब वाले फरिश्तों के साथ रहमत नहीं आती अल्लाह से, अजाब वाले फरिश्तों के साथ अजाब आता है। मौत वाला फरिश्ता है, उसके साथ रहमत नहीं आ रही होती, इल्ला ये कि ईमान वाले की जान निकालने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। तो मौत वाला फरिश्ता जो है वो है तो वही एक ही फरिश्ते, ठीक है, लेकिन काफिर के वक्त वो अजाब बन जाते हैं, काफिर के लिए वो अजाब बन जाते हैं और ईमान वाले के लिए वो रहमत बन जाते हैं। तो गोया के तीन किस्म की चीजों, तीन किस्म के फरिश्तों के, एक फरिश्ते तो है ही रहमत के फरिश्ते, जैसे वाइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तमिउ वअन्सितु लअल्लकुम तुरहमून, ठीक है, जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है ना तो उस वक्त वो रहमत वाले फरिश्ते नाजिल हो रहे, और एक टाइप के फरिश्ते हैं अजाब वाले फरिश्ते, ठीक है। तो वो अजाब वाले फरिश्ते जो है ना वो अजाब ही लेकर के आ रहे होते हैं, रहमत लेकर के नहीं आ रहे होते। और एक टाइप के फरिश्ते ऐसे हैं जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, अगर ईमान वाले पर आ रहे हैं तो रहमत, अगर काफिर पर आ रहे हैं तो जहमत, जैसे मौत का फरिश्ता, ठीक है। तो फरिश्तों के जो जो रोल्स हैं ना फरिश्तों के, ये बड़े यानी आप समझ लें पूरा का पूरा जो ये कायनात का निजाम है, ठीक है, तकवीनी निजाम, ठीक है, ये पूरा का पूरा निजाम जो है वो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से चला रहे हैं। तो अब तसव्वुर कर लें कि कायनात के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या जो है वो अल्लाह ताला की हिकमतें कार फरमा हैं, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा कायनात के अंदर। तो अब हर काम के लिए फरिश्ते, तो बस सोच ले कि कितने टाइप ऑफ फरिश्ते होंगे और कितनी तादाद होगी फरिश्तों की, है ना। ये अल्लाह है, ये हमारा अल्लाह है, ठीक है। अब उस अल्लाह के साथ हमारा कैसा ताल्लुक होना चाहिए, ऐसा साइड पर रखने वाला है, लास्ट प्रायोरिटी वाला ताल्लुक है, और अपना अपने नफ्स के साथ जो है ना वो असल ताल्लुक तो अपने नफ्स के साथ, पर अल्लाह को रखा परे, अल्लाह वालों को रखा परे, ठीक है ना। जब तक मुझसे एग्री करते होंगे आई विल बी हैप्पी विद देम, मुझसे डिसएग्री किया भाड़ में जाए उसके बाद राइट मुझसे डिसएग्री करते हैं ना भाड़ में जाए उसके बाद जहन्नुम में जाए, सही है। ये हमारा ताल्लुक है अल्लाह वालों, अल्लाह के साथ भी, अल्लाह वालों के साथ भी, ठीक है ना। वो तो फिर अल्लाह ताला के पास पहुंचेंगे तो सब पता चलेगा कि क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन अल्लाह को हमने जो है ना वो कुछ समझा हुआ नहीं है असल में, लेकिन अल्लाह ताला तो रहमत और लानत ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के जरिए से ये दोनों काम करवाते हैं, ठीक है। तो अच्छा सवाल आपने किया कि फरिश्तों के रिलेशन के साथ आप रहमत और लानत को समझा दें, बहरहाल ताला में हिदायत अता फरमाए। तो फरमाते हैं कि जी अल्लाह के साथ कोई और माबूद तजवीज ना करना, वरना इल्जाम खुर्दा और रांदा होकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अब मसला हमारे साथ यही है कि हम हैं इंडिया के रहने वाले, है ना, पाकिस्तानी भी पहले इंडियन ही थे, सही है, तो सारी इंडियन है इसका मतलब है। तो अब इंडिया में रहते हैं बुत, वो बुत परस्त, ठीक है, इंडिया में, चाहे वो इधर वाला इंडिया हो चाहे वो उधर वाला इंडिया हो, प्री पार्टीशन इंडिया हो या पोस्ट पार्टीशन इंडिया हो, तो भाई इंडिया तो है हिंदुस्तान, हिंदुओं का मुल्क, ठीक है। तो अब जो है ना वो हमारे दिमाग में ये चीज घुस चुकी है और निकल के नहीं दे रही है कि जो पत्थर के बुत और मिट्टी के बुत और मार्बल के बुत वही बुत होते हैं, उनके अलावा कोई बुत नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हिंदू लोग जो है ना वो पत्थर के बुत और मिट्टी के बुत को पूजा करते हैं, तो बस हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो हम वी आर ग्रेट, ठीक है ना, वी आर गुड। तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि माबूद का लफ्ज इस्तेमाल किया, बुतों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है ना। माबूद जो है वो जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम बात मानते हो, जिसके तुम हुक्म मानते हो, और इन माबूदों में सबसे गंदा माबूद और सबसे बड़ा माबूद झूठे माबूदों में से, झूठे माबूदों में से जो सबसे बड़ा माबूद होता है ना वो इंसान का अपना नफ्स होता है, इंसान का अपना नफ्स, ठीक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया कि वो है ना कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक कि तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपने औलाद से भी ज्यादा, जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। ठीक है, तो उमर रज़ान जो थे वो सच्चे पक्के खरे इंसान थे, ठीक है, और अकलमंद भी थे, अकल भी पूरी थी उनके पास और सच्चे पक्के भी थे, बात समझ गए फौरन। तो उन्होंने सच बयान फरमा दिया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज के मुकाबले में आपसे ज्यादा मोहब्बत है, सिवाय अपनी जात के, सिवाय अपनी जात के। ठीक है, तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं है उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। ठीक है, अपनी जात के मुकाबले में तुम्हें मुझसे कम मोहब्बत है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल। तो उमर रतान जो है ना, उन्होंने फिर थोड़े से कुछ लम्हों के बाद, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ भी रखा और बात फरमाई, उमर रतान ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो है ना वो आप मुझसे, मेरी जात से भी ज्यादा अजीज, मुझसे यानी अब मुझे आपको जो है ना अपनी जात से भी ज्यादा मोहब्बत हो गई। तो खैर ये तो एक अलग डिस्कशन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में होती रहती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उमर रतान ये फरमा रहे हैं कि मुझे अपनी जात के मुकाबले में आपसे कम मोहब्बत है, बाकी सारी चीजों से के मुकाबले में आपसे ज्यादा मोहब्बत है, ठीक है, तो अपनी जात से मोहब्बत का मतलब क्या होता है, अपनी जात से मोहब्बत का मतलब क्या होता है कि उमर फारूक रहतान जो है वो नाउज बिल्ला आईने के सामने खड़े होकर के अपना अपना चेहरा देखते रहते होंगे, जैसे कि माशाल्लाह बच्चियां आईना मिल जाए बस उनको, ठीक है, तो वो आईने के सामने खड़ी हुई है, देखे जा रही है अपने आप को, छोटी बच्ची भी होगी ना तो वो भी देखे जा रही है। एक दफा वो हजरत ने वाकया सुनाया ना, आपने सुना होगा शायद, कि वो बंदरों के एक ग्रोह ने जो है ना वो हमला कर दिया इंसानों के ऊपर, ठीक है, वो कहीं जा रहे थे और सच्चा वाकया था, तो उन्होंने जो है ना वो आकर के वो जो खाने पीने की चीजें लेकर के चले गए, और जो उनके हाथ लगा ना वो लेकर के चले गए। तो आंटी जो थी ना, यानी बंदर आंटी नहीं बल्कि इंसान आंटी, उनके पर्स में ना एक आईना भी था, तो वो एक बंदर ने जो है ना उस आईने को निकाला और वो लेकर के चला गया, और फिर जो है ना दूर बैठ करके वो उस आईने में अपनी शक्ल देखे चला जा रहा है, देखे चला जा रहा है। तो किसी ने जो है वो हजरत को ये वाकया बताया कि भाई इस तरह से जो है ना बंदरों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, वो सारी चीजें हमारी लेकर भाग गए, और एक जो बंदर था ना उसने आईना लिया और वो दूर बैठ करके आईने में अपनी शक्ल देखे चले जा रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया वो यकीनन बंदरिया होगी, राइट, तो उस वजह से वो आईने में अपने आप को देखे चली जा रही थी। तो खैर, तो उमर रज़ान क्या ये काम करते थे कि अपने चेहरे को देखे चले जा रहे हैं और हर वक्त कंघा किए चले जा रहे हैं, राइट, या जो है वो सुर्खी पाउडर लगाए चले जा रहे हैं कि मुझे अपने आप से मोहब्बत है, तो इस वजह से सुर्खी पाउडर लगाते थे, या जो है वो एक से एक जो है ना वो नित नए कपड़े पहन रहे होते थे, या और इस किस्म के वो परफ्यूम लगा रहे होते थे हर वक्त अपने ऊपर, इस वजह से समझते थे कि मुझे नबी सर से ज्यादा अपने आप से मोहब्बत है। नहीं, उमर रतान इवन इससे पहले भी इस किस्म की हरकतें नहीं करते थे, ठीक है ना, तो अपने आप से ज्यादा मोहब्बत का मतलब क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाकी जो जितने बुरे काम है ना, जितने मखलूक के अंदर अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी है, मैं उन सबको बुरा समझता हूँ और आप ही की बात को सही समझता हूँ, ठीक है ना, आप जिस चीज को गलत कह देते हैं उस चीज को मैं गलत मानता हूँ, जिस चीज को आप सही कहते हैं उस चीज को मैं सही मानता हूँ, और मुझे कोई बुरा आदमी जो है वो अच्छा नहीं लगता और कोई अच्छा आदमी मुझे बुरा नहीं लगता, ठीक है ना, जिसको आपने अच्छा कह दिया वो मुझे बुरा नहीं लगता, जिसको आपने बुरा कह दिया वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, यहां तक तो बात मुझे समझ में आ गई है, यानी मैं आई हैव स्टार्टेड टेकिंग माई डेफिनेशन फ्रॉम यू अबाउट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में मैंने आपसे डेफिनेशंस ले ली, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अभी तक मैंने अपने बारे में आपसे डेफिनेशंस नहीं ली, मैंने अपने बारे में आपकी तारीफ को कबूल नहीं किया है, अपने बारे में फैसला मैंने खुद ही करना है ना, कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, आई विल डिसाइड इट ऑन माई ओन, कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, ये मैं खुद डिफाइन करूंगा, यानी मेरा नफ्स डिफाइन करेगा, मेरा नफ्स डिफाइन करेगा, वहां पर मैं आपको एक्सेस नहीं देना चाहता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, उम्मीद है कि किसी के तो समझ में आ रहा होगा। अपनी जात से मोहब्बत का मतलब क्या है, क्या है अपनी जात से मोहब्बत? हमने आपको इस तरीके से समझाया कि आईने में अपना चेहरा देखते रहना, ये अपनी जात से मोहब्बत है, राइट? या अच्छे अच्छे खाने खाते रहना, ये अपनी जात से मोहब्बत है, राइट? या जो है वो नहाते धोते रहना, ये अपनी जात से मोहब्बत है नबी अलैहि सलाम के मुकाबले में, क्या ये अपनी जात से मोहब्बत कहलाएगी? जो उमर अजान कह रहे हैं कि मैं अपने मुकाबले में आपसे कम मोहब्बत करता हूँ, क्या है अपनी जात से मोहब्बत? अपनी जात से मोहब्बत का ये मतलब है कि अपने बारे में डेफिनेशन मैं आपसे नहीं लूंगा। ये बात किसको समझ, किसी को समझ जाए जरा, कुछ तो हौसला अफजाई फरमाएं कि अगर आपको समझ में आ गई। हमारी हौसला अफजाई से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, उतने कह सकते हैं कि हाँ आपको बात समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो पूछ भी लेना, ये भी एक अच्छी बात है, पूछने नहीं समझ में आए, ठीक है। अपने बारे में तारीफ, डेफिनेशन, तारीफ से मुराद यहाँ पर डेफिनेशन, कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ या क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन जो है ना, ये मैं आपसे नहीं लूंगा, ये मैं खुद करूंगा, यानी मैं अपने नफ्स से इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आई प्रेफर माई सेल्फ ओवर यू, आई प्रेफर माई ओन अंडरस्टैंडिंग ओवर योर अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अंग्रेजी में भी बात समझाने की कोशिश कर, ठीक है। तो क्या लिखा किसी ने, यानी ये हुआ कि मैं कैसी हूं वो दूसरे ने बताया, मैं कैसी हूं वो दूसरे ने बताया। दूसरे से यहाँ पे क्या मुराद, दूसरे क्या लिखा आपने, दूसरों के गुनाहों पे नजर हो, अपनी इसलाह की फिक्र ना हो, अपने गुनाहों पे नजर ना हो, अपनी जात के लिए शेर से गाइडेंस ना ले, खुद ही जो ठीक लगे वो करे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट मीन्स दैट आई एम नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म फॉर माई सेल्फ, एग्जैक्टली, आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म फॉर एवरी वन एल्स बट नॉट माई सेल्फ, कीप योर हैंड्स ऑफ मी, स्टे अवे, कहते हैं ना अंग्रेजी में, स्टे अवे फ्रॉम मी, कीप योर हैंड्स ऑफ मी, है ना। और हम उर्दू में कराची की स्लैंग में कहते हैं ज्यादा फ्री मत हो, शेर साहब ज्यादा फ्री मत होइएगा, पीर साहब ज्यादा फ्री मत होइएगा, ठीक है ना, अपने हुदूद में रहिएगा, ठीक है ना, बी इन योर टाइमिंग्स। उमर शरीफ था एक कॉमेडियन कराची का, बी इन योर टाइमिंग्स, अपनी औकात में रहिएगा शेर साहब, है ना। आई एम नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, एग्जैक्ट, सही है। हाँ, बाकी दुनिया की क्रिटिसिज्म के लिए मैं आपके लिए तैयार, मैं आप सुनने के लिए तैयार हूँ। आपने कह दिया जो स्कूल सिस्टम खराब है, मैंने मान लिया स्कूल सिस्टम खराब है। आपने कह दिया काफिर गंदे होते हैं, मैंने मान लिया काफिर गंदे होते हैं। आपने कह दिया वुमेन लिबरेशन गलत होती है, मैंने मान लिया वुमेन लिबरेशन गलत गलत होती है। आपने कह दिया करियर ओरिएंटेड जो है वो औरतों को नहीं होना चाहिए बल्कि घर की हिफाजत करनी चाहिए औरतों को, मैंने मान लिया आपकी बात को, मैंने सब मान लिया एक्सेप्ट वेन इट कम्स टू मी, राइट, एक्सेप्ट वेन इट कम्स टू मी, ठीक है ना। वहां पे आप जो है ना वो अपने वजूद में रहिएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। किसी और ने क्या लिखा भाई, कि जब शेख कहे कि आपके अंदर ये मसला है तो मान जाएं और इसलाह की फिक्र करें, ना कि ये प्रूफ करने की कोशिश करना कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। माशाल्लाह, ना आपको ज्यादा खैर दे, आपको बात समझ में आगे लगता है, ठीक है। हम जो है ना उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, बल्कि ऑफेंडेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब शेख साहब कहते हैं ना कि आपके अंदर ये वाली खराबी है, आपने ये वाली गलती करी है, ठीक है, तो नहीं, शेख साहब ये कैसे हो सकता है, ठीक है, आपको गलत फहमी हुई है, या ये कि आप सही नहीं कह रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो ये है इसका मतलब, सही है। इसको सुपुर्दगी का ना होना भी कह सकते हैं, हाँ कहते तो उसको यही है सुपुर्दगी का ना होना, लेकिन अब ये आप अपने हद तक ही रखें, सुपुर्दगी का लफ्ज जो है ना ये अभी एक नई टर्म इसके अंदर शामिल हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहरहाल, तो कोई और माबूद तजवीज ना करना, है, यानी अपने नफ्स को भी माबूद तजवीज ना करना शुरू कर देना, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि तू इल्जाम फोड़दा और रांदा होकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा, चाहे मरने के बाद वाली जहन्नुम में फेंका जाए, चाहे जो है वो मरने से पहले वाली जहन्नुम यानी इसी दुनिया की जहन्नुम के अंदर फेंक दिया जाए, तो जहन्नुम में जरूर फेंका जाएगा। फिर सेल्फ फिश, ये किसी मछली का नाम है, सेल्फ फिश। अच्छा, तो फरमाते हैं कि अहकाम मज़कूरा को शुरू भी तौहीद के मज़मून से किया गया था और ख़त्म भी इसी पर किया गया, और आगे भी इसी मज़मून तौहीद का बयान है कि जब ऊपर शिर्क का कबीह और बातिल होना सुन लिया, तो क्या फिर भी ऐसी बातों के कायल होते हो जो तौहीद के खिलाफ है? ठीक है, यानी जब सुन लिया तुमने अल्लाह ताला से, कुरान मजीद में सुन लिया, नबी अलैहिस्सलाम की जुबानी सुन लिया, फिर भी तुम ऐसी बातों के कायल होते हो, यानी इन बातों को जो है वो सही समझते हो। कायल होने का मतलब किसी बात को सही समझना, ये लोग ये तौहीद के खिलाफ हैं। मसलन क्या, तो अब ये मुशरिकीन मक्का से बात हो रही है या मुशरिकीन अरब से बात हो रही है कि मसलन ये कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारे रब ने तो तुमको तो बेटियों के साथ खास किया, तुमको तो बेटों के साथ खास किया है, यानी तुम्हारी जो अजमत है, तुम्हारी जो बड़ाई है ना, वो क्या है कि तुम्हारे पास बेटे पैदा हो, है ना, बेटों का होना जो है बहुत बड़ी चीज समझा जाता था, और आज भी जो है वो इस किस्म के जुहला जो है वो समझते हैं। तो बेटों को खास किया, यानी तुम खास हो जाते हो जब तुम्हें बेटे मिलते हैं, ठीक है ना। तो और ये बात ये मानते थे कि बेटे जो है वो अल्लाह ताला देता है, इतना तो ये भी मानते थे, है ना, कुछ कॉमनैलिटीज थी कि बेटा जो है ना वो अल्लाह ताला देता है, बेटा जो है ना वो खुद ब खुद नहीं पैदा हो जाता, ठीक है, साइंटिफिकली नहीं पैदा हो जाता बगैर अल्लाह के इन्वॉल्वमेंट के, ऐसा वो लोग नहीं समझते थे, ठीक है ना। तो कुछ कॉमनैलिटीज थी, तो उन कॉमनैलिटीज के ऊपर जो है ना वो बात की जाती थी। इस फितने दज्जाल के दौर में तो शैतान ने बहुत सारी वो कॉमनैलिटीज भी खत्म कर दी, ठीक है ना, जैसे हम पिछले दिनों ये जुमे के बयान के अंदर बात कर रहे थे ना कि जो हया के टॉपिक पे बात चल रही थी, तो उसमें फिर ये बात आई कि भाई जो मगरबी मुआशरा है ना, तो वहां पर तो हया का जनाजा निकल चुका है और हया नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची, और बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों जैसी वो जिंदगी गुजारते हैं। तो किसी ने ना हमें एक छोटा सा बयान भेजा किसी शेख साहब का, तो वो शेख साहब जो है वो बता रहे थे कि कोई वाकया बता रहे थे अमरीका वगैरह का, अमरीका ही का वाकया, कि मिस्र में मिस्र के कोई शेख अमरीका के किसी मस्जिद में इमाम होते थे, तो उनके पास ना एक मिस्री फैमिली आई और उन्होंने शेख साहब से बात करी कि भाई हमारा जो बेटा है ना वो बड़ा बेरा रवि का शिकार हो गया है और गलत किस्म के ताल्लुकात वगैरह रखता है, तो आप कुछ ना इसको समझा समझा दीजिए, बिठा दीजिए, बता दीजिए, नसीहत कर दीजिए। तो उन शेख साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ, लाओ मेरे मेरे पास उसको। तो लड़का तो उनके सामने आ गया, तो अब वो सोचने लगे कि मैं इससे क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, ठीक है। तो उनको जो है ना वो हदीस मुबारक याद आई कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जो है ना वो आप गुनाह की इजाज़त दे दीजिए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लेके समझाया था कि क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसे करे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे करे, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे करे, तुम्हारी, बहुत लंबी हदीस है वो, इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम समझाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि जिना का जो फेल है वो मेरी माँ के साथ कोई करे, मेरी बेटी के साथ कोई करे, मेरी बहन के साथ कोई करे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस भी औरत के साथ तुम करोगे तो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, किसी की बहन होगी, ठीक है ना। तो उस पर उनको बात समझ में आ गई, फिर नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ भी फरमा दी, उन्होंने तौबा कर ली, ठीक है। तो इन शेख साहब ने जो है वो उस मिस्री लड़के से इसी तरह से बात शुरू करी कि क्या तुम पसंद करोगे कि वो तुम्हारी बहन के साथ ऐसा काम करे। तो आगे से वो लड़का जवाब देता है कि ये आई हैव नो प्रॉब्लम इफ शी इज ओके विद इट, अगर मेरी बहन जो है वो किसी के साथ जो है वो फ्लर्ट करना चाहती है, अगर बाहर जाना चाहती है, गंदी हरकत करना चाहती है, अगर वो अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, है ना। इसी को जो है वो जदीदियत कहते हैं, इसी को जो है वो उनके यहाँ जो है वो डेमोक्रेसी कहते हैं या लिबर्टी कहते हैं इसको, है ना, अपनी मर्जी से जो काम करो सो करो, कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई तुम्हारे ऊपर फोर्स ना करे, चाहे चाहे कोई भी हो तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स ना करे, ठीक है। तो ये अब ये जो कॉमन बात थी ना, आप किस बुनियाद पे किसी से कोई बात कर रहे हैं, वो कॉमनैलिटी ही खत्म हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने तो उस सहाबी से बात करी थी कि भाई वो भी इस बात को पसंद नहीं करेगा, तो अब उस चीज को सामने रख करके उन्होंने गुनाह से उनके बारे में उसको समझाया, उन सहाबी को समझाया। लेकिन अब जो है वो सिर्फ मगरबी माशरे में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है ना, ये तो मगरबी माशरे की बात उन शेख साहब ने सुना दी कि मगरबी माशरे में ऐसा होता है। हकीकत तो इस वक्त ये है कि मशरकी माशरे में भी ऐसा ही हो गया। ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो हालात चल रहे हैं ना, और आज नहीं चल रहे बल्कि बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कि पीपल एब्सोल्युटली हैव नो केयर कि उनकी बहन भी ये काम करिए तो वो कर रहे हैं, उनकी बेटी भी अगर ये वाला काम करिए तो उनको कोई परवाह नहीं है इन चीजों की। इवन पाकिस्तान के अंदर, इवन हिंदुस्तान के अंदर, राइट, नहीं परवाह कि कौन क्या कर रहा है, ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद हैं इंडिया पाकिस्तान के माशरे के अंदर। ठीक है, तो बहरहाल तुमने तो बेटों के साथ तुमको तो तुम्हारे रब ने बेटों के साथ खास किया है, और खुद फरिश्तों को अपनी बेटियां बनाई हैं। ठीक है, जैसे कि अरब के जाहिल फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फिर तफसीरन ये बात लिख रहे हैं ना कि जैसे कि अरब के जाहिल फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे, जो दो वजह से बातिल, यानी ये बात दो वजह से गलत है। अव्वल तो अल्लाह के लिए औलाद करार देना, फिर औलाद भी लड़कियां जिनको ये लोग अपने लिए पसंद नहीं करते थे, नाकारा समझते थे। ठीक है, इससे अल्लाह ताला की तरफ एक और नुक्स की निस्बत होती है, एक और नुक्स की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है कि जिस चीज जिसको ये बुरा समझते थे तो बुरी चीज को अल्लाह ताला की तरफ निस्बत किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेटियां बेजाती ही बुरी, बेटियां बेजाती ही बुरी नहीं है, वो तो औलाद है, ठीक है ना, वो तो अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन असल बुराई जो है ना, ये नहीं है कि कोई वाकई बुरी चीज थी उसको जो है वो अल्लाह की तरफ निस्बत कर दिया, कोई वाकई बुरी चीज थी उसको अल्लाह की तरफ निस्बत कर दिया, नहीं, वाकई बुरी होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर बाथरूम की नजासत, ये वाकई बुरी है, इसको कोई भी अच्छा नहीं कहता, राइट, मुसलमान भी अच्छा नहीं कहता, काफिर भी अच्छा नहीं कहता, सब उसको नजस कहते हैं, चाहे कितने ही गंदे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बाथरूम की नजासत को अच्छा नहीं कहते। अभी तक हमने तो कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो उसको है ना यमी नाउजुबिल्लाह ऐसा कहता हो। ठीक है ना, तो वो तो बेजात ही गंदी चीज है ना, तो उसको अल्लाह की तरफ नस्बत करना तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो गंद बहुत ही ज्यादा बुराई है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज है लेकिन तुमने अपने जहन में उसको गंदा समझा हुआ है, अपने जहन में उसको बुरा समझा हुआ है, तो उस चीज को अल्लाह की तरफ नस्बत कर देना, जबकि जिस चीज को तो तुमने अपने जहन में अच्छा समझा हुआ है उसको अल्लाह की तरफ नस्बत ना करना, तो ये भी बुरी बात है, ये भी कबीर चीज है। ठीक है, क्या मतलब, इससे नतीजा क्या निकला कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर माइंड, हमारी सोच के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है। ठीक है, हमारी सोच से किसी चीज, जो अच्छी चीज है उसको हमने अपनी सोच में जब नाकस बना लिया, तो अब वो चीज जो है ना वो किसी बड़े की तरफ नस्बत करना ये बुराई हो जाए। बेशक वो चीज अपनी हकीकत में अच्छी हो, लेकिन हमारी सोच में तो वो गंदी हो गई ना, अब वो गंदी चीज आपने उठा करके ले अल्लाह की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी सोच, मैं कहने का मकसद ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट तो है बेशक, लेकिन आसान अल्फाज में समझना, इतना समझ लें कि हमारी सोच जो है ना ये फैसला कुन चीज, हमारी सोच ये फैसला कुन चीज है। ठीक है ना, सोच अच्छी तो उससे जो है ना वो कम हैसियत वाली चीज भी अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर हमारी सोच गंदी तो इससे ज्यादा हैसियत वाली चीज भी गंदी हो जाती है, कम हैसियत हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बेटियां असल में हकीकतन अच्छी चीज है, लेकिन हमारी सोच की वजह से अब वो गंदी चीज बन गई, और उस गंदी चीज को उठा करके अल्लाह ताला की तरफ नस्बत कर दिया। ठीक है ना, और अल्लाह ताला इसी बात को तो फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है कि ये तुमने क्या किया। है ना, अच्छे जिसको तुम अच्छा समझते हो अपने पास रख लिया, जिसको तुम बुरा समझते हो मेरे मेरे मत्थे मार दिया, ठीक है। तो बहरहाल सब था, आपको तो गाने की कोशिश कर रही थी। आगे फरमाते हैं कि बेशक तुम बड़ी बात कहते हो, बड़ी बात से मुराद बड़ी बुरी बात कहते हो, मौलान अजीमा इन्नहु इन्नकुम लतकूलूना कौलन अजीमा, यानी बड़ी अजीम बुरी बात कहते हो। और अफसोस तो ये है कि इस मज़मून तौहीद और शिर्क के इब्ताल को हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान कर दिया है ताकि अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है ना। पीछे पीछे भी बात हुई थी ना, वलकद सर्रफना फी हादल कुरान लियज़्ज़करू, सर्रफना फेर फेर करके बार बार तकरार के साथ, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तकरार इस्तेमाल करी है, और तकरार भी कभी जो है वो लफ्जन तकरार है, यानी जैसे लफ्ज जो है वो पीछे नकल हो चुके हैं उन्हीं लफ्जों को अल्लाह ताला ने बार बार रिपीट किया, ठीक है ना। कई जगहों पे अल्फाज भी रिपीट होते हैं, लेकिन कई जगहों पे अल्फाज रिपीट नहीं होते लेकिन मानन रिपीटेशन होती है। मानन यानी वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार 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 बार, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, अगरचे के अल्फाज थोड़े से डिफरेंट हैं, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट सेम है, रिपिटिशन रिपिटिशन रिपिटिशन, ठीक है। तो अल इल्मु यजीदु बित्तकरार, और जो आम लोग होते हैं, जो हमारे जैसे अवाम नास होते हैं ना, तो उनमें इतनी समझ अकल और इतना फुर्सत उनके पास नहीं होती कि वो खुद से तकरार करते रहें, तो टीचर को तकरार करके देनी पड़ती है, टीचर को तकरार। अब जितनी हन्नाना सेंटर ऑनलाइन की टीचर्स है ना, वो तैयार हो जाएं, ठीक है। टीचर्स को हम कह रहे हैं कि जी अब जो है ना वो हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, ठीक है, हम तो पहुंच गए हैं, पर आप पहुंचे हो ना पहुंचे हो वो बाद में बात होगी आपसे, कि इन लोगों को जो है ना ये तकरार के जरिए से ही पढ़ाना है, ठीक है, तकरार ही के जरिए से पढ़ाना है, तो अब आप तैयार हो जाए तकरार करने के लिए। तकरार खुद ही करवानी पड़ेगी भाई, अल्लाह की रजा की खातिर। तो एनीवेज, तो अल्लाह ताला क्या क्या कर रहे हैं ये देखिए, ये तो क्या है वो, फिर मुझे हदीस याद नहीं आ रही कि अपने आप को मुजयन करो अल्लाह ताला के अखलाक से, बे अखलाक बे अखलाक अल्लाह, तो अल्लाह ताला का खुल करके भी अपने सुनने वालों अपने जो मुखातब हैं उनके सामने तकरार करते हैं, फिर फिर करके बयान करते हैं, तो हम भी अल्लाह ताला वाली सिफत जो है, हम भी अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला की सुन्नत पे अमल करें, हम क्यों ना करें फिर, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जी हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान कर दिया ताकि अच्छी तरह समझ। अब मसला तकरार के साथ ये है कि तकरार, और वो भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में और बात बात पे बहाने बहाने से तकरार करने के लिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है, बल्कि ये भी शर्त है कि जो तकरार करने वाला है ना उसको जो है ना वो बात अच्छे से समझ में आती है, उसको बात अच्छे से समझ में आती है, वरना वो तकरार करा नहीं सकता। मदरसों में ना वो तकरार ग्रुप्स होते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ भी तकरार ग्रुप्स हो जाते हैं, ऑनलाइन तकरार ग्रुप बना देते हैं, तो उसमें जो जो तालिबा तकरार करवाती है ना, ये वो तालिबा होती हैं जिनको के बात सबसे ज्यादा समझ में आई भी होती है, हर कोई तकरार नहीं करवा सकता, सही। तो जिसको समझ में आती है ना वही तकरार करवा सकता है, तो अब जो है ना वो खुद भी समझना पड़ेगा ज्यादा अच्छी तरीके से ताकि हम अच्छे से जो है ना वो तकरार करवा सकते। बहरहाल वो पढ़ाना भी वैसे भी पढ़ा भी नहीं सकते बगैर अच्छे से समझे हुए, लेकिन तकरार के लिए भी यही शर्त है। यानी तो फरमाते हैं कि जी उनको ताकि अच्छी तरह से समझ लें, और मुख्तलिफ तरीकों से बार बार तौहीद के इस बात और शिर्क के इब्ताल के बावजूद तौहीद से उनको नफरत ही बढ़ती जाती है, ठीक है। बार बार तौहीद के इस बात और शिर्क के इब्ताल के बावजूद नफरत बढ़ती है, वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, नफरत के अंदर जो है ना वो बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए अल्लाह ताला ने तकरार खत्म नहीं कर दी कि भाई ये इनको इनको दे आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल अबाउट इट, है ना, ये बात नहीं समझ रहे हैं और ये जो है वो नफरत में बढ़ते चले जाने, तो चलो मैं तकरार खत्म कर देता हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं किया, हालांकि ऐसा भी नहीं था कि अल्लाह ताला जो है वो अपने तरीकों को चेंज नहीं करते, अल्लाह ताला अपने तरीक़ों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ताला को पता सब कुछ है कि क्या होना है क्या होना है क्या होना है, लेकिन अल्लाह ताला पहले एक तरीका इख्तियार करते हैं फिर बाद में उस तरीक़ों को चेंज कर देते हैं। जैसे कि नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट भी यही है कि पहले अल्लाह ताला ने कोई चीज़ कोई हुक्म नाजिल किया, अब जो है ना अल्लाह ताला की हिकमत में अब उस हुक्म की रेलिवेंस खत्म हो गई, अल्लाह ताला ने उसको मनसूख कर दिया। तो भाई पहले ही मंसूख कर देते, पहले ही नाजिल ना करते, नहीं, अल्लाह ताला की हिकमत है, पहले नाजिल करेंगे फिर उसके बाद उसको मंसूख करेंगे। अल्लाह ताला ने पहले जो है ना वो ऐसे नबी किसी कौम में भेज दिए, ठीक है, कि जिस कौम की जुबान और इन नबी की जुबान डिफरेंट थी, बल्कि वो नबी जो था ना वो इस कौम के अंदर पैदा हुए फर्द नहीं थे, लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना उसूल बदल दिया कि अब जो है ना वो जिस कौम के अंदर नबी भेजूंगा ना वो नबी जो है वो उसी कौम का फर्ज होगा, सही है। तो अल्लाह ताला चीजों को चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम के नाउज बिल्ला जिद पकड़ी हुई अल्लाह ताला ने कि नहीं बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, जो मेरा तरीका है बस मैं उसको, नहीं, अल्लाह ताला चेंज कर लेते हैं, हमारे कहने पे चेंज नहीं करते कि हम अल्लाह ताला से कहें अल्लाह ताला ने अपना तरीका चेंज कर, नहीं, अल्लाह ताला का अपना ये काम है, ठीक है ना। हसीनों को हर बात सचती है, ठीक है। तो यहां पर भी अल्लाह ताला चेंज कर लेते, क्या चेंज कर देते कि तकरार से भाई ये लोग है ना वो बिदकते हैं, तकरार से ये लोग बिदकते हैं, तकरार से ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इनके अंदर जो है वो नफरत पैदा हो जाती है, चलो मैं तकरार नहीं करता। तो यहां पे अल्लाह ताला ने क्यों नहीं चेंज किया अपने तरीके को, ये आप बता देगा जल्दी से। जैसे और चीजों पे अल्लाह ताला ने अपना तरीका चेंज कर लिया, यहां पे चेंज नहीं किया कि तकरार को अबैंडन कर दिया बिकॉज दीज पीपल डोंट लाइक इट, तो अल्लाह ने तकरार के तरीकों को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। क्यों क्यों नहीं छोड़ा अल्लाह ताला? बड़ा आसान सा जवाब है, अगर लेना चाहे तो अल्लाह ताला ने तकरार के तरीकों को इन लोगों की वजह से नहीं छोड़ दिया, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ दिया? उसकी वजह यही थी कि अल्लाह ताला ने, असल टाइम खत्म हो गया क्लास का, तो मजीद वेट करेंगे तो और आपको देर हो जाएगी। तो इस वजह से कि अल्लाह ताला ने जो अपने बंदे बनाए हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उन बंदों के अंदर जो है ना ये फितरत पैदा कर दी है कि उनको तनफउल मुमिनीन, मानने वाले को तकरार में फायदा देना ही होता है, ठीक है। तकरार से जो है ना वो बात समझ में आती है, ये हमारी अल्लाह ताला ने वायरिंग इस तरह की बना दी, ठीक है ना, हमारा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया है, हमारी फितरत इस तरह की बना दी है कि तकरार से हमें फायदा, ठीक है। बात पहले के मुकाबले में ज्यादा समझ में आ जाती है। अब मानना और ना मानना ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये लोग जो नफरत करते हैं ना हमारे फेर फेर के बयान करने से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बात समझ में नहीं आई, नहीं, तकरार की वजह से इनको बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जिद और अनानियत की वजह से इनकार पे तुले हुए हैं। तो भाई तो तकरार का तो फायदा इनको फिर भी पहुंच रहा है ना, तो जो चीज इनके लिए भी फायदेमंद है मैं उसको क्यों खत्म कर दूं, और जो मेरे मानने वाले बंदे हैं उनको तो फायदा हो ही रहा है, उनको तो बात और अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो खत्म करने की फिर कोई वजह नहीं थी, कोई हिकमत नहीं थी, क्योंकि इनका ना मानना और इनकी नफरत करना इसका मसला तकरार नहीं था, इसका मसला जो है ना वो इनकी जिद और अनानियत, ये वजह थी इनकी नफरत में मुब्तला होने, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं थी कि अपने तरीके को चेंज कर देते हैं इन के नफरत की वजह से। हाँ, अल्लाह ताला ने हमारी फितरत ही ऐसी बनाई है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत से लोगों को इसका इल्म ही नहीं था और वो लोग अल्लाह के पास भी चले गए, तब उनको भी सजा मिलती होगी। हमारे मुआशरे में लोग इस बात की को अहमियत ही नहीं देते कि ईमान किस तरह मुकम्मल होगा। अल्लाह का शुक्र है हमें ये सब का इल्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात कही कि आपने, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसका इल्म हो गया। लेकिन जो जिसको इल्म नहीं हुआ ना, तो उसका भी रीजन जो है ना वो यही होती थी कि उन्होंने इस बात को अहमियत दी नहीं, असल में अगर वो अहमियत देते ना, तो हमारे अकाबरीन और हमारे जो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, जो यानी सही मानों में जो अल्लाह वाले, हम तो है ना फेक फेक किस्म के लोग हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हम तो जाली किस्म के लोग हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबरीन, हमारे मशायख है ना, जो हमारे यानी असल, वो तो सारे के सारे पहले लोग थे ना, ठीक है ना। तो जो लोग दुनिया से चले गए इस बात को समझे बगैर, तो अब ये किसका कसूर है कि असल अल्लाह वाले तो उनके इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने कभी उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, उन्होंने कभी उनकी बात ही नहीं सुनी, है ना। तो अब जो है वो इसके ऊपर सजा मिलती होगी कि नहीं मिलती होगी, भाई ये तो हम नहीं कहते कि सजा मिलती है, अल्लाह ताला माफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अल्लाह ताला सजा का फैसला कर भी दे ना किसी ऐसे शख्स के लिए, तो भाई तो अल्लाह ताला को तो हक बनता है ना, ठीक है ना, कि भाई मैंने तो अपने बंदे तुम्हारे दरमियान रखे थे ना, तो अब तुम अगर लिफ्ट ना कराओ उनको, फिर उसके बाद कहो कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो अब मैं आपको सजा भी नहीं दूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला को तो हक बनता है। ये और बात है कि उनकी औलादें जिनको के बात समझ में आ गई, ठीक है ना, तो वो उनकी मगफरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला उनकी गलती को माफ भी कर सकते हैं अगर वो ईमान के साथ दुनिया से गए हैं। ईमान मुकम्मल बेशक ना कर सके, लेकिन ईमान के साथ तो चले गए ना दुनिया से, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत भी फरमा सकते हैं, और इसमें हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला किसी ऐसे बंदे को सजा दें, तो अल्लाह ताला डिजर्व्स इट, अल्लाह ताला हैज ऑल द राइट, ठीक है। तकरार करने से कभी ना कभी बंदे के दिल में बात बैठ जाती है, जैसे माँ बच्चे को समझाती रहती है, वो सुनी अनसुनी कर देता है, लेकिन कभी तो उसको माँ की बात आती है और अमल भी कर देता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा मार्फ, ये जो क्लास है तो यही खत्म हो जाए बस आज की क्लास में, माफ कीजिएगा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो कहते हैं कि जी, तो उनको नफरत बढ़ती चली जाती है। आप इफ्तार शिर के लिए उनसे फरमाइए कि अगर इस माबूद हक के साथ और माबूद भी शरीक होते, जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो इस हालत में अर्श वाले हकीकी खुदा तक उन्होंने यानी दूसरे माबूदों ने कभी का रास्ता ढूंढ लिया होता, ठीक है। अर्श वाले खुदा तक ना उन माबूदों ने कभी का रास्ता ढूंढ लिया होता, यानी जिनको तुम अल्लाह के साथ खुदाई का शरीक करार देते हो, अगर वो वाकई शरीक होते तो अर्श वाले खुदा पर चढ़ाई कर देते, अर्श वाले खुदा पर ना ये लोग चढ़ाई कर देते, ठीक है, और रास्ता ढूंढ लेते। और जब खुदाओं में जंग हो जाती तो दुनिया के निज़ाम किस तरह चलता, जिसका एक खास निज़ाम निज़ाम मुहकम के साथ चलना, यानी खुदाओं में जंग हो जाती तो दुनिया के निज़ाम किस तरह से चलता, जिसका एक खास निज़ाम मुहकम के साथ चलना हर शख्स मुशाहिदा करता है, ठीक है ना। यानी वी कैन ऑल सी कि इस दुनिया का निज़ाम जो है ना, वो कैसे जबरदस्त तरीके से, कि गोया के साफ जाहिर है कि एक है इसका निजाम चलाने वाला, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, कोई इस किस्म की जो है ना वो है ना। अब हम जो है ना वो असल में छोटे मोटे ना लोगों के फड्डों की वजह से ना, कि ये इसने लड़ाई कर दी, उसने ऐसे लड़ाई कर दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जो फसाद जिसको कहा जाता है, जहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अईदी नास, इंसानों की वजह से जमीन और यानी खुश्की और तरी के अंदर फसाद पैदा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमें दुनिया में फसाद नजर आते हैं ना, हम इसको समझना शुरू कर देते हैं कि यानी कायनात में जंग हो रही है ना। तो इस वजह से ना ये जो आर्ग्यूमेंट है ना अल्लाह ताला का, कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो दुनिया में तो जंग हो रही होती, तो हम जो है ना वो अपनी छोटी सी जंग को हम समझना शुरू करते हैं गोया के खुदाओं में जंग हो रही है, खुदाओं में जंग हो रही है, ठीक है ना। अब हम ये तो नहीं कहते कि एक से ज्यादा खुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हम ये तो नहीं कहते कि एक से ज्यादा खुदा है, लेकिन इतना जरूर हो जाता है कि हमारी इस गलत फहमी की वजह से कि हम अपनी छोटी छोटी जंगों को खुदाई जंगों से ताबीर करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला का जो ये आर्ग्यूमेंट है ना तौहीद के बारे में, तौहीद को प्रूव करते हैं अल्लाह ताला इस आर्ग्यूमेंट से कि अगर एक से ज्यादा खुदा होता तो जमीन आसमान में फसाद पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि यार फसाद तो है ही, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ये दलील समझ में नहीं आ रही तौहीद की, यानी कोई और दलील लेकर गया और ये दलील हमारे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि फसाद तो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए, कि ये जो फसाद हमारी वजह से पैदा हुआ है ना, ये फसाद कोई फसाद नहीं है, इससे अल्लाह ताला की कायनात का कोई निज़ाम नहीं तब्दील हो रहा, ठीक है ना। ये तो छोटा छोटा सा फसाद है जो कि हमारे मुआशरे में है, या जो है वो आपके जो है वो खाने पीने की चीज़ों के अंदर रेडियो एक्टिविटी शामिल हो गई है, तो अब वो खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो फायदा की बजाय जो है नुकसानदेह होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। जैसे कि कल जो है वो हम न्यूक्लियर साइंस के ऊपर एक लेक्चर सुन रहे थे, ठीक है, बच्चों को हम अपने होम स्कूल बच्चे जो है ना वो शुरू में तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इस्तकामत के साथ हमारा साथ दिया, ठीक है ना, और हम तो अपने अदब के हुक्म पे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने ऐसे निज़ाम बना दिए हैं कि अब होम स्कूल बच्चे जो है वो साइंस लैब्स के अंदर जा करके पीएचडी डॉक्टर से जो है वो लेक्चर सुन रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनके डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, और इतना इल्म हासिल कर रहे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारे होम स्कूल बच्चे हैं, तो हम होम स्कूल बच्चों को कल लेकर ही गए थे पीएचडी डॉक्टर्स के पास, ठीक है ना। उन्होंने उनको न्यूक्लियर साइंसेज के ऊपर भी चीजें बताई, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा था, सुनिए, मैं अपना आर्ग्यूमेंट भी भूल गया। नहीं तो याद है मुझे, लेकिन कहना क्या चाह रहा था, फसाद हाँ, लेकिन वो ये जो फसाद है ना जो हमारी वजह से है, ये बहुत छोटा सा फसाद है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। जबकि एक से ज्यादा खुदाओं की वजह से जो, हाँ सॉरी, तो उस, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बात याद आ गई। तो हम जिन फसाद को फसाद कह रहे हैं ना, ये फसाद जो है ना ये छोटे छोटे से फसाद है, हत्ता के रेडियो एक्टिविटी जो फूड आइटम्स के अंदर दाखिल हो गई है। तो कहना मैं ये चाह रहा था उस वक्त कि वो जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के अंदर ना 9 ऐसे मकामात हैं कि जहां पर जो है ना वो रेडियो एक्टिव सीड्स और रेडियो एक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है, छुपा करके रखते हैं इस बात को। क्यों? इसलिए कि आवाम जो है वो दीवाने हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे कि यार हमें रेडियो एक्टिव चीजें खिला रहे हो, है ना, इसके अंदर तुमने जो है ना पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें मिलाई हुई हैं, पेस्टिसाइड्स, और उनके अंदर तुमने फलानी को मार दिया, फलानी चीज को मार दिया, फलानी तुमने जीन को चेंज कर दिया। तो अमरीका अमरीका के अंदर तो लोगों को ये बातें बहुत पहले से समझ में आ गई है कि हमें किस किस्म का खाना खिला रहे हैं ये लोग, है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही, सवाए चंद लोगों के। तो यानी ये फसाद है ये ना कि सो कॉल्ड जो है वो बर्फ कम हो रही है तो पानी ज्यादा हो रहा है, तो हरिकेन ज्यादा आने शुरू हो गए, तो ये छोटे छोटे फसाद है, ठीक है ना। यहाँ पर अल्लाह ताला उन छोटे छोटे फसादों की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ना वो यानी कायनात का जो अल्लाह ताला ने तकवीनी निज़ाम बनाया हुआ है ना, उस निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते हैं ना, तो वो जो तकवीनी निज़ाम जिससे कि सब कुछ चल रहा है ना, वही जो है वो तब्दील हो जाता, जो कि हमारे गुनाह जो है ना वो उस तकवीनी निज़ाम को नहीं चेंज कर सकते। हमारे गुनाह तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अल्लाह का तकवीनी निज़ाम तो इतना अजीम है कि जिसके आगे ये इवन हम जो कर रहे हैं ना सो कॉल्ड, कभी हम कहना हम तो खैर क्या, ये गोरे जो है ना कभी कहना शुरू करते हैं जी ओजोन लेयर जो है ना वो डिप्लीट हो रही है, सारे मर जाएंगे, है ना, ओजोन जो है वो ऊपर से नीचे आ जाएगी और सारे मर जाएंगे, और कभी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से जो है वो यूरोप जो है वो आइस एज में चला जाएगा, और कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े चेंजेस ला सकें, ठीक है ना। जितने हमने गंद मचाई हुई ना दुनिया के अंदर, इस तमाम गंद को एक एक लहर जो है ना वो सारी की सारी ठीक कर सकती है, ठीक है। अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत बुलंद है, बहुत बहुत इन कंट्रोल है और कम्प्लीटली इन पावर है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला जिस फसाद की बात कर रहे हैं ना, कि जो एक से ज्यादा खुदाओं की वजह से होता, तो वो फसाद नहीं है, ये फसाद जिसको कि हम बतौर फसाद देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हमें कोई इजाजत मिल गई फसाद फैलाने की, ये हरगिज़ बात नहीं की जा रही है, बस इतनी बात की जा रही है कि अल्लाह ताला का जो दलील है वो 100% दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो कहते हैं कि निज़ाम आलम का सही तौर पर चलते रहना खुद इस बात की दलील है कि एक खुदा के सिवा कोई दूसरा उसका शरीक नहीं है, इससे साबित हुआ कि ये लोग जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला इससे पाक और इससे बहुत ज्यादा बाला व बरतर है। वो ऐसा पाक है कि तमाम सातों आसमान और जमीन और जितने फरिश्ते आदमी और जिन इनमें मौजूद हैं उन सब के सब कौलन या हालन उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। सब के सब अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं। और ये तस्बीह सिर्फ अकल वाले इंसान और जिन के साथ मखसूस नहीं, बल्कि जमीन और आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं जो तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उसकी तस्बीह पाकी बयान करने को समझते नहीं हो। बेशक वो बड़ा हलीम बड़ा गफूर है। ठीक है, तो ये जो आखिरी आयत और आखिरी आयत के जो मजमून है ना, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह हमें बात करनी है अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो। अगली क्लास के अंदर मारुफ मसाइल के तहत जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। तो तस्बीह बयान करना और हर मखलूक का तस्बीह बयान करना, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माशाल्लाह हमारे होम स्कूल बच्चों में यही वाला टॉपिक आजकल साइंसेस के मौजूद में चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।